चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलेश्वर की जय। श्री श्री गोपाल हलधर की जय। श्री श्री निताय गौर हरि की जय। ग्रंथ राज श्रीमद्भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। कौन सा श्लोक? 33 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 नारायणं नमस्कृत्य
नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं
नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये
ततो जयमुदीरये
नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
नित्यं भागवत सेवया
भगवत्युत्तम श्लोके
भगवत्युत्तम श्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम चौथा स्कंद 12वां अध्याय ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना। आवाज क्या है?
किचन का किचन में।
अच्छा, इतना दूर से आ रहा है वो? श्लोक संख्या 33
इति
व्यवसितम्
व्यवसितम्
तस्य
तस्य
व्यवसाय
व्यवसाय
सुरा
सुरा
उत्तमो
उत्तमो
दर्शयाम
दर्शयाम
आसतुः
आसतु
देवीम
देवीम
पुरः
पुरः
यानेन
यानेन
गच्छति
गच्छति
इति व्यवसितं तस्य
इति व्यवसितं तस्य
व्यवसाय सुरोत्तमो
व्यवसाय सुरोत्तमो
दर्शयामासतुर्देवीं
दर्शयामासतुर्देवीं
पुरोयानेन गच्छति
पुरोयानेन गच्छति
इति व्यवसितं तस्य
इति व्यवसितं तस्य
व्यवसाय सुरोत्तमो
व्यवसाय सुरोत्तमो
दर्शयामासतु देवीं
दर्शयामासतु देवीं
पुरोयानेन गच्छति
पुरोयानेन गच्छति
इति व्यवसितं तस्य
इति व्यवसितं तस्य
व्यवसायेन सुरोत्तमं
व्यवसाय सुरोत्तमं
दर्शयामासुतु दर्शयामासतुर्देवीं
दर्शयामासतुर्देवीं
पुरोयानेन गच्छति
पुरोयानेन गच्छति
इति व्यवसितं तस्य
इति व्यवसितं तस्य
व्यवसाय सुरोत्तमो
व्यवसाय सुरोत्तमो
दर्शयामासतुर्देवीं
दर्शयामासतुर्देवीं
पुरोयानेन गच्छति
पुरोयानेन गच्छति
इति व्यवसितं तस्य
इति व्यवसितं तस्य
व्यवसाय सुरोत्तमो
व्यवसाय सुरोत्तमो
दर्शयामासतुर्देवीं
दर्शयामासतुर्देवीं
पुरोयानेन गच्छति
पुरोयानेन गच्छति
इति
इस प्रकार
व्यवसितं
व्यवसितं
चिंतन
चिंतन
तस्य
तस्य
ध्रुवका
ध्रुवका
व्यवसाय
व्यवसाय
ज्ञान
सुर उत्तमो
दो प्रमुख पार्षद दर्शयाम आसतुः उसको दिखाया
देवीं
पूज्या सुनीति पुरः
समक्ष
यानेन
विमान से
गच्छतीं
आगे जाती हुई
अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा वैकुंठ लोक के महान पार्षद नंद तथा सुनंद ध्रुव महाराज के मन की बात जान गए, अतः उन्होंने उन्हें दिखाया कि उनकी माता सुनीति दूसरे यान में आगे आगे जा रही हैं। तात्पर्य, यह घटना सिद्ध करती है कि जिस शिक्षा या दीक्षा गुरु के ध्रुव महाराज जैसा शिष्य हो, जो इतनी दृढ़ता से भक्ति करे, तो उसे शिष्य अपने साथ ले जाता है, भले ही गुरु उतना बढ़ा चढ़ा न हो। यद्यपि सुनीति ध्रुव महाराज को उपदेश देने वाली थीं, किंतु स्त्री होने के कारण वे न तो जंगल जा सकीं न ध्रुव महाराज के समान तपस्या कर सकीं, तो भी ध्रुव महाराज अपनी माता को अपने साथ ले जाने में समर्थ हो सके। इसी प्रकार प्रह्लाद महाराज ने भी अपने नास्तिक पिता हिरण्यकशिपु का उद्धार किया। इससे यह निष्कर्ष निकला कि यदि शिष्य अथवा संतान अत्यधिक प्रबल भक्त हो तो वह अपने माता पिता अथवा शिक्षा या दीक्षा गुरु को अपने साथ वैकुंठ लोक ले जा सकता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे, यदि मैं एक भी जीव को भगवान के धाम पहुंचा सका तो मैं समझूंगा कि मेरा उद्देश्य कृष्ण भावनामृत का प्रसार सफल हुआ। अब कृष्ण भावनामृत आंदोलन विश्व भर में फैल रहा है और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यद्यपि मैं अनेक मामलों में पुंग हूँ, किंतु यदि मेरा एक भी शिष्य ध्रुव महाराज के समान शक्तिशाली हो जाए तो वह अपने साथ मुझे भी वैकुंठ लोक ले जाने में समर्थ हो सकता है। दोहराई अनुवाद। वैकुंठ लोक के महान पार्षद नंद तथा सुनंद ध्रुव महाराज के मन की बात जान गए। अतः उन्होंने उन्हें दिखाया कि उनकी माता सुनीति दूसरे यान में आगे आगे जा रही हैं। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपवत्कदा मह्यं ददाति स्वपदाम्बिकम्। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णश्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ये भौतिक जगत में रहते हुए धार्मिक कर्तव्य सबके होते हैं। ऐसा कोई नहीं बोल सकता है कि मेरे कोई कर्तव्य नहीं है, केवल अधिकार है। आधुनिक मानसिकता इस प्रकार होती जा रही है कि लोग केवल अपने अधिकार की बात करते हैं। मेरा अधिकार है ये प्राप्त करना, मुझे ये चाहिए बस। और अपने कर्तव्य क्या है इसके बारे में नहीं सोचते हैं। किसी भी सभ्य समाज में जब तक हम कर्तव्यों के ऊपर भी पर्याप्त जोर नहीं देंगे, वो समाज प्रगतिशील नहीं हो सकता है। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसा भी नहीं कि केवल हम कर्तव्य करते रहें और हमारे कोई अधिकार ना हो। तो अधिकार प्रदान हमें देखना चाहिए कि हम कैसे दूसरों को उनका अधिकार प्रदान करें, और अपने लिए सोचना चाहिए कि मैं कर्तव्यों का पालन कैसे कर सकूं। आप समझ रहे हैं इस बात को? दूसरों के लिए हमें सोचना चाहिए कि उनका अधिकार उनको कैसे मिले, और अपने लिए सोचना चाहिए कि हम अपने कर्तव्यों को कैसे निभाएं। तो यदि हरेक व्यक्ति ऐसे सोचे तो क्या होगा, हरेक व्यक्ति सोचेगा कि अन्यों का अधिकार कैसे हो जाए और मेरा कर्तव्य कैसे ठीक हो जाए। इसलिए हरेक व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेगा और हरेक के अधिकारी की रक्षा भी होगी, क्योंकि सभी लोग ऐसे सोच रहे हैं। परंतु जब थोड़े लोग ऐसे नहीं सोचते हैं फिर गड़बड़ हो जाता है। इसलिए वैदिक सभ्यता के अनुसार कर्तव्यों के ऊपर अधिक जोर दिया जाता था। जब कर्तव्यों का पालन सभी लोग करेंगे अपने आप ही सभी के अधिकार भी प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए अधिकार और कर्तव्य, इन दोनों की तुलना में कर्तव्य अधिक महत्वपूर्ण है। आजकल हम देखते हैं कि हमारे समाज में ये आज़ादी या स्वतंत्रता की बात बहुत की जाती है, बराबर है। हर व्यक्ति कहता है आप कौन होते हो मुझे रोकने के लिए, मेरा अधिकार है। हमारे देश में कायदा है, कानून है, संविधान है। संविधान पता है क्या है?
कॉन्स्टिट्यूशन।
हाँ, अब सबको पता है ना संविधान काया है। संविधान मंजे काय है तय का
देश का कानून
का एक
कानून का
कॉन्स्टिट्यूशन
म्हणजे काय? कॉन्स्टिट्यूशन म्हणजे मोठे शब्द झाले। संविधान म्हणजे काय? ठीक है, कैसे जीना चाहिए और किसी भी देश में एक आधारशिला होनी चाहिए। आधारशिला में ये बताया जाता है कि ये देश की आत्मा क्या है, ये देश का उद्देश्य क्या है, ये देश का दर्शन क्या होगा, ये देश किन सिद्धांतों पे चलेगा, किन मूल्यों पे चलेगा। एक आधार स्तंभ है ये संविधान, और इसके आधार पे सारे अलग अलग कानून बनाए जाते हैं। जितने में कायदे कानून बनाए जाते हैं वो संविधान के अनुसार होने चाहिए। यदि कोई कायदा कानून ऐसे होता है जो संविधान में नहीं है तो अदालत में जाके उसको खारिज कर दिया जा सकता है, क्योंकि ये कानून सही नहीं बनाया सरकार ने, क्योंकि संविधान के विरुद्ध है। तो जैसे हमारे मूल शास्त्र होते हैं ना, तो उनके अनुसार सब कुछ होना चाहिए, बराबर। तो उसी तरह से संविधान होता है कि हमने ये देश को क्यों बनाया, किन सिद्धांतों पे ये देश चलेगा इत्यादि। तो आजकल ये प्रथा हो गई है कि सब लोग सोचते हैं संविधान ने सबको अधिकार दिया हुआ है, परंतु संविधान में सबके कर्तव्यों के बारे में जो बताया गया है उसकी बातचीत ज्यादा नहीं होती है। तो सब लोग झगड़ा करते हैं, क्यों? मेरा अधिकार मुझे प्राप्त होना चाहिए, बस मुझे ये चाहिए, संविधान ने मुझे ये अधिकार दिया है, मुझे ये चाहिए। इसलिए सब लोग अपने अपने अधिकार के लिए झगड़ रहे हैं। परंतु कोई ऐसे नहीं झगड़ता कि मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा कर्तव्य मुझे ठीक से पालन करना चाहिए, हम लोग कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, मैंने भी कर्तव्य का पालन नहीं किया, ऐसा कोई नहीं बोलता है, है ना। धार्मिक जीवन मतलब कर्तव्यों के ऊपर अधिक जोर देना, न कि अधिकार के ऊपर। तो ये दो शब्द कौन से हैं? कर्तव्य,
अधिकार।
और ये केवल देश की बात नहीं है, मनुष्य समाज में भी साधारण समाज में रहते हुए, एक परिवार में रहते हुए, आश्रम में रहते हुए, ये संसार में प्रकृति के संग में रहते हुए, ये संपूर्ण भौतिक सृष्टि में ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। और धर्म जो है, ये दोनों चीजें धर्म पर आधारित है। तो धर्म क्या है, जो बतलाता है कि हमारे कर्तव्य क्या होने चाहिए, और सबका कर्तव्य का पालन होगा तो सबको अधिकार मिल जाते हैं, अपने आप मिल जाएंगे सबको अधिकार। जब सब लोग कर्तव्य का पालन करेंगे तो सबको अधिकार भी अपने आप मिल जाएगा। परंतु जब लोग अधिकार पे जोर देंगे तो क्या होगा, कर्तव्यों का पालन कोई नहीं करेंगे। सब लोग झगड़ा भांडण केवल करेंगे, क्यों, मेरा अधिकार मेरा अधिकार मेरा अधिकार। परिवार में भी देखा जाता है, सब लोग झगड़ते मेरा अधिकार मेरा अधिकार। आजकल ये बहुत प्रचलित हो गई है बात, क्या है ये कि हर परिवार में अधिकार के ऊपर झगड़े होते हैं, मेरे संपत्ति का अधिकार, ये अधिकार मेरा, वो मेरा, मेरी संपत्ति। कर्तव्य क्या है वो नहीं देखते हैं। कैसे हम अपना अधिकार छीन ले, कानून के हिसाब से हमको हमारा हक है, हम छीन लेंगे इसको। तो अधिक से अधिक जो समाज में समस्याएं होती है वो इसके कारण होती है। तो जीवन में हर एक व्यक्ति, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो जिसको जो कह सकता है कि मेरा केवल अधिकार है, मेरा कर्तव्य नहीं है। और वो उतना अधिक प्रगतिशील समाज माना जाएगा, उतना अधिक सभ्य और सुसंस्कृत समाज माना जाएगा जिसमें सारे लोग कर्तव्यों के ऊपर अधिक जोर देते हैं अपने लिए, और इसके फलस्वरूप सबको अपने अपने अधिकार भरपूर मिल जाते हैं। लेकिन जब अधिकार के लिए जोर दिया जाता है तो अनेकों को अधिकार नहीं मिलेगा, थोड़े लोगों को जरूरत से ज्यादा अधिकार मिल जाता है, फिर शोषण होता है। कर्तव्यों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप, अधिकारों के ऊपर अधिक जोर देने के फलस्वरूप शोषण होता है, हर तरह का, सामाजिक शोषण, आर्थिक शोषण, पारिवारिक शोषण, हर दृष्टि से शोषण होने लगता है। तो आप उदाहरण दीजिए कि कर्तव्यों की बात करते हैं तो किसी के प्रति होना चाहिए ना। कर्तव्य मतलब किसके प्रति है? ऐसे आसमान में कर्तव्य मतलब क्या है, किसके प्रति? तो आप बताइए कि जब कर्तव्यों की बात आती है तो ऐसे उदाहरण दीजिए हमारे दैनिक जीवन में कि किस किस के प्रति हमारे कर्तव्य होने चाहिए। एक साधारण व्यक्ति सोचे समाज में, भक्त की बात बाद में करेंगे, हमारे आश्रम की बात बाद में करेंगे, एक बस संसार में एक व्यक्ति है, कोई भी साधारण व्यक्ति है, उसके किस तरह के कर्तव्य होने चाहिए, किसके प्रति कर्तव्य होने चाहिए, कोई उदाहरण एक एक करके आप दीजिए। एक,
माता पिता,
माता पिता के प्रति कर्तव्य होने चाहिए। एक एक के बारे में हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये इससे संबंधित है अभी। हाँ,
प्रकृति,
प्रकृति के प्रति हमारा कर्तव्य है, और
समाज के,
हाँ, समाज के प्रति कर्तव्य है, गुरु के प्रति कर्तव्य है, तो पर कौन,
वरिष्ठों
के प्रति कर्तव्य है, घर के प्रति कर्तव्य है, गाय के प्रति कर्तव्य है, ठीक है, घर के प्रति भी है, गाय के प्रति है कर्तव्य, और
ऋषि और देवताओं के प्रति,
ऋषि और देवताओं के प्रति कर्तव्य है, वो ऋण हो गया, एक कर्तव्य भी है, ठीक है, और
हमारे संबंधों के प्रति,
हमारे सगे संबंधियों के प्रति कोई कर्तव्य है, ऐसे कितने सारे कर्तव्य है
मित्रों,
अपने आप के प्रति भी है कि नहीं कर्तव्य? अपने आप के प्रति भी कोई कर्तव्य है, बराबर। माता पिता के प्रति कर्तव्य है, गृहस्थ को चाहिए बच्चों के प्रति कर्तव्य है कि नहीं? नेताओं के प्रति कर्तव्य है, प्रजा के प्रति कर्तव्य है, मित्रों के प्रति कर्तव्य है, हमारे पड़ोसियों के प्रति कर्तव्य है, और प्रकृति के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है? पशुओं के प्रति, पक्षियों के प्रति, कीड़ों के प्रति, धरती के प्रति, आसमान के प्रति, जल जलाशय जल के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति, सबके प्रति हमारा कर्तव्य है। अंततः सबसे मूल कर्तव्य किसके प्रति? आपने किसी ने भी नहीं, भगवान के प्रति। ये कर्तव्य सबसे पहले बताना चाहिए था आपको, क्योंकि ये मूल कर्तव्य है। इसके संबंध में अन्य कर्तव्यों को देखना चाहिए, तब हमारे अन्य जितने भी कर्तव्य हैं वो सब संपूर्ण हो रहते हैं। केवल हम अलग अलग दृष्टि से सबके प्रति कर्तव्य देखेंगे तो वो संसारी कर्तव्य हो जाएगा, वो जन्म मृत्यु के चक्कर में उनको बांध के ही रहेगा। परंतु हम जब ये समझ लेते हैं कि हमारा मूल कर्तव्य भगवान श्री कृष्ण के प्रति है, और इस मानदंड या इसके अनुसार हमें अन्य कर्तव्यों को देखना चाहिए, तब हमारे संपूर्ण जितने भी कर्तव्य हैं वो परिपूर्ण हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। ये कैसे है कोई बता सकते हैं? क्या है इसका उदाहरण? जब
जैसे हम जड़ को पानी देते हैं तो उससे सब शाखाएं पत्ते फूल सबको भी उनको पोषण मिल जाते हैं। जैसे हम भगवान को हमारा कर्तव्य निभाएंगे तो साथ साथ सब कर्तव्य भी
निभाएंगे। तो जिस तरह से यथा तरोर मूल निषेचनेना, तो जिस तरह से यथा जिस प्रकार से हम वृक्ष के मूल को जल देते हैं, यथा तरोर, तरोर अर्थात तरु को, पेड़ को मूल जड़ निषेचनेना सिंचन करते हैं, फिर आगे तृप्यन्ति तत् स्कंध भुजो भुज उपशाखा। तो मूल को पानी देने से क्या क्या होता है? स्कंध, फिर पत्ता फूल सबको पानी मिल जाता है, और प्राणोपहारा चछेन्द्रिया यथेन्द्रियाणा। तो जिस प्रकार से प्राण को या पेट को देने से सारी इंद्रियां इंद्रियों को पोषण मिल जाता है, उसी प्रकार तथैव सर्वम अच्युतेज अर्हणम अच्युतेज, तो मतलब वो उपासना, उसी प्रकार से इज्य मतलब उपासना करना, किनका? अच्युत का। अच्युत श्री कृष्ण की उपासना करेंगे तो सारे देवतागण संतुष्ट हो जाएंगे, संपूर्ण सृष्टि संतुष्ट हो जाएगी। तो तभी बोलते हैं ना, ओम शांति ओम शांति, ओम आप शांति, ओम अग्नि शांति, ये शांति वो शांति, तब संभव होगी जब हम अच्युत श्री कृष्ण के चरण कमलों में सेवा करेंगे। तो अभी बताइए कि इस दृष्टिकोण से, किस दृष्टिकोण से कि हम श्री कृष्ण के शरण में गए हैं, हमारा कृष्ण के प्रति कर्तव्य है कि हम उनके शरण में जाएं, उनकी सेवा करें, ये हमारा मूल कर्तव्य है। इस कर्तव्य के आधार पे अन्य कर्तव्यों को देखें, इसका कोई उदाहरण दीजिए। अभी प्रकृति की बात कही तो इस दृष्टिकोण से कैसे प्रकृति के प्रति कर्तव्य हमारा हो सकता है?
अगर हमारा भगवान के साथ में प्रकृति के साथ में कर्तव्य, तो हम देखेंगे कि भगवान कैसे संतुष्ट होंगे अगर ये कर्तव्य अच्छी तरह से किया तो।
नहीं, हम भगवान के प्रति जब हमारा कर्तव्य है तो उसके फलस्वरूप प्रकृति के प्रति कैसा कर्तव्य होना चाहिए, कि क्या हमारी दृष्टि होनी चाहिए प्रकृति के प्रति,
कि ये जो प्रकृति है ये भगवान की ही प्रकृति
है। ये प्रकृति भगवान की प्रकृति है, क्योंकि मैं भगवान का शरणागत हूँ, भगवान की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। तो क्योंकि ये प्रकृति भगवान की प्रकृति है, इसलिए प्रकृति को भी मुझे नष्ट नहीं करना चाहिए, प्रकृति के प्रति भी मुझे कोई गलत काम नहीं करना, दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भगवान की है। प्रभुपाद जी को एक बार किसी ने पूछा प्रकृति के बारे में हमारे क्या होने चाहिए विचार, तो उन्होंने, उनका जो किताब पढ़ने का चश्मा था वो उनके मेज पे था, तो प्रभुपाद ने पूछा, आप ये चश्मा को देखते हो तो मन में क्या आता है? तो शिष्य ने बोला, प्रभुपाद जी आप मन में आते हैं। बोले क्यों? क्योंकि ये चश्मा आपका है। तो उन्होंने बोला, उसी तरह से प्रकृति को जब हम देखते हैं तो हमें क्या स्मरण आना चाहिए? भगवान कृष्ण। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति भगवान की है। तो पर्यावरण के प्रति जो एक अभी अभियान वगैरह चल रहा है ना समाज में, तो इसके लिए हमारी भक्ति की दृष्टि ही सर्वोत्तम है, क्योंकि हम समझते हैं कि ये दैवी प्रकृति है, केवल प्रकृति नहीं है, दैवी है ये। क्यों? क्योंकि भगवान की प्रकृति है, भगवान ने इसका सृजन किया है, भगवान इसका पालन कर रहे हैं। तो भगवान की संपत्ति होने के नाते हमें इसकी सेवा इस दृष्टि से करनी चाहिए कि ये भगवान की है, और कैसे प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए ताकि भगवान की सेवा हम कर सकें। तो जो भी फल फूल सब आते हैं उनको भी हम भगवान को अर्पण करते हैं। प्रकृति क्या है? माता है। भगवान कौन है? पिता है। और हम सब कौन है?
संतान
है। परिवार में क्या होता है? माता पिता बच्चे, है कि नहीं? तो आज आधुनिक काल में अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे, लेकिन भगवान को हमको मत बोलो, भगवान के बारे में मत बोलो। जैसे यहाँ भी सेवा करने के लिए आए थे ना, बहुत पेड़ लगाने के लिए और पेड़ पौधे लगाने की, तो वो पर्यावरण की रक्षा करना चाहते हैं, जो कि अच्छी बात है। पर्यावरण नष्ट करने के बजाय रक्षा करो, अच्छा है। परंतु वो केवल पर्यावरण और प्रकृति के पीछे पड़े हैं, उनको भगवान नहीं चाहिए। बोले ये भगवान भगवान बीच में मत लाओ, हम केवल प्रकृति की रक्षा करेंगे। तो इसमें क्या कमी है फिर?
मूल कर्तव्य
नहीं है। जो मूल को काट कर हम शाखाओं का इसका उसका सेवा करेंगे तो कैसे संतुष्टि होगी? ठीक है, कम से कम उतना कर रहे हैं, अच्छी बात है, परंतु संपूर्ण करने के लिए उनको भगवान को भी बीच में लेना चाहिए। क्यों? जिस प्रकार से प्रकृति माता है ना, तो बच्चे जो है वो केवल माता को मानेंगे, पिता नहीं मानेंगे, तो परिवार संपूर्ण नहीं होगा। परिवार संपूर्ण होने के लिए पिता भी चाहिए। केवल माता अकेले होंगे तो नहीं चलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि माता की सेवा नहीं करनी चाहिए बच्चों को, लेकिन साथ साथ पिता भी होने चाहिए। तो जो आजकल पर्यावरण की रक्षा करने में है, ज्यादा क्रियाशील है, वो कहते हैं भगवान को नहीं मानते, आपकी सेवा अपूर्ण है, क्योंकि आप केवल माता चाहते हैं, पिता नहीं चाहते हैं। भगवान पिता है, अहम बीज प्रधा पिता, और प्रकृति माता है, माता प्रकृति। तो ये एक उदाहरण है कैसे मूल कर्तव्य भगवान के प्रति, उसके संबंध में हम देखते हैं कि प्रकृति के प्रति भी कर्तव्य है। तो और किसके प्रति? किसी ने बोला समाज के प्रति कर्तव्य है या माता पिता। चलो माता पिता की बात लेते हैं। तो अभी माता पिता के प्रति जो कर्तव्य है वो किस दृष्टि से देखना चाहिए? अभी माता पिता का उदाहरण किसने दिया था? हाँ, तो बताओ अभी प्रकृति के ही तरह माता पिता का कैसे करना चाहिए?
हमको माता पिता भी भगवान से ही प्राप्त हुए हैं, क्योंकि पिछले जन्म में हम कुछ दूसरे माता पिता रहेंगे, इस जन्म में दूसरे माता पिता मिले, तो ये माता पिता हमको भगवान ने ही दिए हैं, तो भगवान तो हमको ऐसे ही मतलब देखना चाहिए।
कैसे देखना है? ऐसे मतलब देखना चाहिए
तो हमको उनकी सेवा करना चाहिए ताकि वे भी भगवान की भक्ति में लगे। हाँ,
इनके ही कृपा से।
यस, ये बराबर। और कोई बताएंगे कैसे?
इनके ही कृपा से हम लोगों का भक्ति में आ पाए मनुष्य जन्म।
ठीक है, उनके कृपा से मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। ठीक है।
हाँ, हम लोग पुत्र नरक से हमको पुत्र उनको ये जगत से उनको लेके जाना सबसे बड़ा मूल कर्तव्य है, कि इस प्रकार ध्रुव महाराज उनका माता को।
ठीक है। तो देखो, तीन प्रकार के लोग कर्तव्य, तीन प्रकार के संबंध हैं माता पिता के प्रति जो दुनिया में देखे जाते हैं। एक वो है जो अपने माता पिता की परवाही नहीं करते हैं, जब तक वो छोटे हैं तब तक कुछ लाभ पा लेते हैं माता पिता से, फिर उनको त्याग देते हैं। भौतिक जीवन ना भगवान चाहिए उनको ना माता पिता चाहिए, वो अपना मन में जो आए वो करना चाहते हैं। ठीक है। कभी माता पिता को कष्ट देते हैं, कभी क्या क्या करते हैं, अत्याचार करते हैं बूढ़ों के ऊपर, ऐसी ऐसी सब खबरें सुनने में आती हैं समाचार पत्रों में इत्यादि, है ना। कैसे थोड़े दिन पहले खबर आई थी, एक थोड़े दिन नहीं कई महीने हो गए, कि वो अपने बूढ़ी माँ से इतना परेशान होगा, कोई व्यक्ति इतना उसको कष्ट लगा कि अब देखभाल करना है बूढ़ी को, तो उसने वो उसको बांध दिया, सोने के जंजीर से बांध के पलंग पे बांध दिया उसको, उसको दो रात थोड़ा सा उसको भोजन देते थे। फिर बाद में किसी ने देखा, पकड़ा, फिर वो आदमी को जेल में डाला गया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आते हैं। तो ये एक प्रकार का संबंध है। दूसरा प्रकार वो है जो धार्मिक भला है लेकिन उसको भक्ति की जानकारी नहीं है, तो वो सोचता है कि मैं धार्मिक तरह से करना चाहिए, लेकिन वो कर्मकांडीय दृष्टि से करता है, तो वो श्राद्ध आदि सब करेगा। क्यों? पुन्नाम नरका त्रायते यति पुत्रः। क्योंकि पुत्र का अर्थ क्या होता है? जो पुन नाम का एक नरक है, इससे अपने माता पिता को वो छुटकारा दिलाएगा। ये भक्ति के रास्ते में नहीं आया है अभी तक, परंतु कम से कम धार्मिक कुछ तो काम कर रहा है, तो इसलिए श्राद्ध आदि करता है। श्राद्ध करने से क्या होता है कि जो भी पूर्वज अनायास कभी किसी पाप करने के फलस्वरूप नरक में गिरे हों, तो ऐसे श्राद्ध आदि करके पिंड तर्पण आदि वो उन पूर्वजों को नरक से उद्धार करवाता है। तो बच्चे अपने माता पिता और आगे और पूर्वज जो होते हैं उनका सबका उद्धार कर सकते हैं। यही पुत्र पुत्री, यही अर्थ होता है। तो साधारण कर्मकांडीय जीवन में इसलिए श्राद्ध आदि सब करते हैं, पर यहाँ भी फिर भी भगवान नहीं है बीच में, परंतु कम से कम धार्मिक है, कम से कम माता पिता के लिए कुछ सोचते हैं, उनका उद्धार कैसे हो, नरक से बचे वो। और तीसरे प्रकार का क्या है? माता पिता कैसे भक्ति में आए, कैसे उनका भक्ति के दृष्टि से उद्धार हो जाए, ये सोचते हैं। अब इस खास करके सब ब्रह्मचारी के मन में एक ही विचार चल रहा है। जब मैं ये बोल रहा हूँ तो सब के मन में यही चल रहा है, अरे हम तो माता पिता को छोड़ के आए, अभी क्या करेंगे, क्या उत्तर है इसके लिए?
यदि हमारा भक्ति को हम ठीक ठाक करें, भगवान को यदि हम प्रसन्न करें, तो भगवान उनको भी भक्ति देंगे और उनको भी भगवान का निकट में उनको लेंगे, जो हमारा मूल कर्तव्य को।
यदि हम अच्छे भक्त बने, ध्रुव महाराज के पद चिन्हों में हम भी चले, तो क्या होगा? हमारे भक्ति करने के फलस्वरूप हमारे माता पिता का, और बल्कि जैसे प्रहलाद महाराज के संबंध में बताया गया है, 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। उद्धार मतलब ऐसा नहीं कि वो भगवान के धाम में चले जाएंगे अपने आप, परंतु उनके पापों पाप नष्ट हो जाएंगे, नरक में तो वो भी नष्ट हो जाएंगे, और उनको भक्ति करने का एक अवसर मिल जाएगा। परंतु खास करके अपने माता पिता जो सबसे निकट के संबंध हैं, यदि कोई शुद्ध भक्त बन जाता है तो किस तरह का फायदा मिल सकता है माता पिता को, कि ये इस हमारी कल्पना के बाहर है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे ध्रुव महाराज तो शुद्ध भक्त बन गए थे, नंद सुनंद जो उनके वैकुंठ के द्वारपाल हैं, वो स्वयं उनको वैकुंठ में ले जाने के लिए आए थे। तो जाते जाते उनको परवाह हो गई, अरे मेरी माँ का क्या है, क्योंकि उनकी माँ ही पहली शिक्षा गुरु थी। माँ ने ही बोला था कि जब ध्रुव महाराज ने पूछा कि मुझे कैसे राज्य मिल सकता है, मेरे पिता से भी बड़ा राज्य कैसे मिल सकता है, तो बोले मैं नहीं दे सकती। तो कौन दे सकता है? भगवान दे सकते हैं। भगवान कहाँ मिलेंगे? मैंने सुना है कि जंगल में मिलते हैं, साधु लोग जाके तपस्या करते हैं, वहाँ मिलेंगे। तो इसलिए फिर वो जंगल में चले गए। तो पहले शिक्षा गुरु उनकी माँ थी, और वास्तव में हर एक बच्चे के लिए पहले शिक्षा गुरु माँ ही होती है। पिता से ज्यादा माँ का कर्तव्य होता है, संस्कार देने वाले सबसे अधिक माँ होती है कि नहीं? जैसे शिवाजी महाराज की हुआ ना, वो अपने ऋण व्यक्त करते हैं। तो ध्रुव महाराज को याद था कि मेरे माँ के कारण मुझे, अब मैं भगवान के पास गया, नहीं तो मैं वो राजशाही जीवन में ही रहता था। लेकिन माँ के कारण मैं भगवान के पास आया, इसलिए वो मेरे वर्तमान प्रदर्शक गुरु है। क्या मतलब है इसका? वर्तमान मतलब रास्ता, प्रदर्शक मतलब दिखाने वाले। तो उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया भगवान की ओर। श्री निताई गौर हरि की जय। तो मैं उनको कैसे भूल सकता हूँ? उनके प्रति मेरा कर्तव्य है, मुझे आभारी होना चाहिए उनके प्रति कि वो मुझे भक्ति में लेकर आए। इसलिए जब वो वैकुंठ जा रहे थे, उनको याद आया कि अरे मेरे बेचारी माँ अभी बूढ़ी हो गई, अभी उसने मुझे भक्ति में लाया और उसका क्या होगा, ये मन में इतना विचार आया। लेकिन नंद और सुनंद समझ गए, वैकुंठ के जो वासी होते हैं वो मन की बात भी जान लेते हैं, तो उन्होंने जान लिया कि ध्रुव महाराज के मन में ये विचार था। तो उन्होंने हसमुख चेहरे से ध्रुव महाराज को कहा कि चिंता नहीं करना ध्रुव महाराज, वो देखो आगे एक विमान जा रहा है ना, हमारे विमान से आगे और एक विमान जा रहा है, वो भी वैकुंठ जा रहा है, और उसमें आपकी माँ बैठी हुई है, आपके पहले माँ वहां पहुंच रही है, क्योंकि आप शुद्ध भक्त हैं, इसलिए आपके पहले आपकी माँ वहां पहुंच रही है, इसलिए माँ की चिंता मत करना। तो इसलिए खास करके जो ब्रह्मचारी भक्त है, अन्य भक्तों के लिए भी, परंतु विशेष रूप से ब्रह्मचारी भक्त, हमें यह समझ लेना चाहिए कि जब हम भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाते हैं, पूर्णतया अपना हृदय समर्पित करते हैं भगवान को, तो भगवान माता पिता का ख्याल रखते हैं, उनका भी उद्धार हो जाता है। परंतु भक्ति भी नहीं करेंगे, माता पिता का भी ख्याल नहीं रखेंगे, ये नहीं चलेगा। और यदि हम गृहस्थ भक्त हैं तो फिर माता पिता का भी ख्याल रखना चाहिए भक्ति करते करते। तो ये सब अलग अलग स्तर है। तो इस तरह से कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावनामृत दृष्टिकोण से भी हो सकता है। हरेक के प्रति कैसे भगवान से संबंध जोड़ के हम कर्तव्यों को देखें समाज में, ऐसे जितने भी अन्य कर्तव्य हैं उनको इसी दृष्टि से देखना चाहिए। प्रकृति हो, माता पिता हो, समाज हो, हरे कृष्णा। तो यहीं रुकेंगे, समय क्या हुआ?
9 बज रहे।
किसी के कोई प्रश्न है? हाँ,
हमारा एक प्रश्न ये कि जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण से, मतलब ऐसे उदाहरण देते हैं कि भगवान कृष्ण क्या करते हैं कि अगर आकर्षित करते हैं बाद में फिर वो बहुत दुखी हो जाते हैं। ब्रजवासियों का उदाहरण देते हैं कि बहुत दुखी रहे जीवन भर वो, ऐसे भी लोग बोलते हैं कि भगवान कृष्ण मतलब ऐसे अलग दृष्टि से प्रदान प्रस्तुत करते हैं कि एक बार भगवान कृष्ण ने उनको बहुत प्रेम दिया बाद में फिर बहुत दुखी रहे, बहुत दुखी रहे। तो उसको कैसे?
लेकिन वो दुख जो है सबसे ऊंचा सुख है। जो लोग भक्ति के तौर तरीकों से भली भांति परिचित है वो इस बात को समझ सकेंगे। वो विरह का जो प्रेम है उनका, वो सबसे ऊंचा दिव्य आनंद है जिसको दिव्योन्माद कहते हैं। और उनके उदाहरण के द्वारा भगवान सारी दुनिया को बताना चाहते हैं कि देखो मेरे सबसे ऊंचे भक्त जब वो कष्ट में होते हैं तो कैसे करते हैं, मेरी भक्ति मेरी सेवा नहीं छोड़ते हैं, अपनी निष्ठा अपनी श्रद्धा को खोते नहीं है। क्योंकि हम लोग संसार में क्या करते हैं, कुछ भी कष्ट आ गया जीवन में तो भक्ति छोड़ देते हैं, भगवान को दोष देते हैं, भगवान ने ऐसे किया। तो भगवान दुनिया को उदाहरण देना चाहते हैं कि देखो हमको ऐसे भक्तों के पद चिन्हों में चलना चाहिए। ठीक है। हाँ,
पुत्र का अर्थ होता है कि पुण्य नामक नर्तक है, पुत्र क्या केवल पुत्र ही उद्धार कर सकते हैं, पुत्री उद्धार नहीं
है? पुत्री भी कर सकती है, इसलिए हमने कहा पुत्र और पुत्री। कर्मकांडीय दृष्टि में केवल पुत्र, वैसे थोड़े अन्य मार्ग भी हैं कि पुत्र न होने के बाद फिर और अनेक लोग कर सकते हैं इत्यादि, परंतु भक्ति में ऐसे कोई भेद नहीं है। इसलिए भक्त के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, गृहस्थ भक्त के लिए पुत्र हो न हो, पुत्री हो न हो, कोई भी संतान न हो। जो साधारण कर्मकांडीय जीवन में लोग अपने बच्चों के ऊपर निर्भर रहते हैं नरक से मुक्त होने के लिए, वो लोग श्राद्ध करेंगे तब हम मुक्त हो जाएंगे, परंतु भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति हम ना तो हम बच्चों के ऊपर निर्भर नहीं होते कि वो हमारा उद्धार करेंगे, अपने भक्ति के बल पर हम हमारा उद्धार हो जाएगा। और यदि वो भक्त बन गए हमारे बच्चे तो फिर हमारा जीवन तो धन्य हो गया, सुनीति की तरह हो जाएगा, परंतु निर्भर नहीं है। हिरण्यकश्यप जैसे व्यक्ति का उद्धार हो गया प्रहलाद जैसे भक्त पाने के बाद में, परंतु यदि बच्चा दुष्ट भी निकले लेकिन स्वयं यदि वो भक्त है तो वो जाएगा भगवान के धाम। ऐसे भी होता है ना, कभी हिरण्यकश्यप जैसे पिता और प्रहलाद जैसे भक्त, और कभी विपरीत भी हो जाता है। एक शुद्ध भक्त कोई पिता हो और बच्चा दुष्ट निकले, ऐसे भी हो सकता है। स्वयं भगवान का पुत्र भी दुष्ट निकलता है कभी कभी, भौमासुर, भूमि देवी का पुत्र वराह देव पिता, भूमि देवी माता, असुर निकला। होता है कभी कभी।
हमारा सेवा के बारे में, हम सेवा में प्रोप्रेटरशिप और अधिकार को और हमारा प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी कर्तव्य को, जैसे कि हम हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं उसको हम कर्तव्य के हिसाब से, और दूसरा डिपार्टमेंट रहे उनको ना ये करते हो तो उनका वो अधिकार को, इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं सेवा में कैसे कर्तव्य और।
हमको देखना चाहिए कि एक तो आश्रम में रहते हुए हमारे अन्यों के प्रति अधिकार कर्तव्य है, ठीक है। हम अन्यों के बारे में सोचेंगे और हर एक व्यक्ति अन्यों के बारे में सोचेगा तो हर एक का ख्याल हो जाएगा अपने आप। तो किसी को अधिकार की परवाह करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि दूसरे लोग कर रहे हैं। मुझे अधिकार की परवाह करनी नहीं पड़ेगी क्योंकि बाकी सब लोग मेरे अधिकार की बात सोच रहे हैं। लेकिन जितना अन्य लोग मेरे अधिकार के बारे में सोच रहे हैं, मुझे अन्यों के अधिकार के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल सब लोग मेरा अधिकार के बारे में सोचे और मैं भी केवल मेरे ही अधिकार के बारे में सोचूं। मैं दूसरों के अधिकार के बारे में नहीं सोचूं, मैं मेरे कर्तव्यों के बारे में नहीं सोचूं, ऐसा नहीं। हाँ, तो सबको हमारी सबकी विचारधारा ऐसे होनी चाहिए, तब ये समाज वैकुंठ हो जाएगा। और खास करके कृष्ण बीच में लाएंगे और ये भावना हमारी रहे, बस सुखी जीवन है ना। लेकिन जब हम ये सोचने लगते हैं मेरा जनस्य मोहयम अहम ममेति, मैं और मेरा, और फिर ये श्रेय भी मुझे ही मिलना चाहिए, तब गड़बड़ हो जाता है। स्थूल या सूक्ष्म दृष्टि से हम अपने लिए सब लेने का प्रयास करते हैं, गड़बड़म। हाँ,
महाराज ध्रुव महाराज ने उसी जन्म में भगवान को प्राप्त किया, यदि हम वो ऐसा नहीं कर पाए तो माता पिता का कैसे,
क्यों नहीं कर पाओगे? अवश्य कर पाओगे।
नहीं होगा,
और नहीं भी कर पाओगे तो अगले जन्म में कर पाओगे। भक्त के घर में जन्म देंगे प्रभु कृष्ण। पिछले जन्म में थे भक्त, नहीं पूर्ण कर पाए, भक्त के घर में जन्म लिया, वो भी गोकुलधाम में आए। इसलिए कोई डर नहीं, लेकिन अभी आने वाले जन्मों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, इसी जन्म में कैसे करेंगे वो सोचना। हाँ, जैसे अभी दसवीं कक्षा को पास करने के लिए कोई सीमा होती है क्या, आयु की, या कितने बार आप परीक्षा में बैठ सकते हैं, ऐसे कोई सीमा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 बार बैठ सकते हैं, 20 बार बैठ सकते हैं, ऐसा कोई सीमा है?
एक एग्जाम को एक एक परीक्षा का ऐसा है सबको नहीं।
अच्छा, कई ऐसे होते हैं जैसे किसी को जैसे वो पुलिस ऑफिसर बनना है, किसी को कुछ बनना है, तो कुछ सीमा होती है कि आप 3 बार बैठ सकते हैं परीक्षा में, 4 बार बैठ सकते हैं, या आपकी आयु 30 के नीचे 25 के नीचे होनी चाहिए, कुछ वो ऐसे नियम होते हैं। तो व्यक्ति शुरू करता है तो नहीं सोचेगा कि अरे 25 साल 30 साल तक है ना तो मैं आराम से करूँगा, वो सोचेगा जल्दी से जल्दी मिल जाए मुझे, है कि नहीं। तो उसी तरह से हमको भी आने वाले जन्मों के राह नहीं देखना चाहिए, अगले जन्म में भी हमको मौका मिलेगा, लेकिन फिर भी अगले जन्म में फिर से जन्म लेना, फिर स्कूल जाना, फिर डांट सुनना, खाओ ये दवाई लो, ऐसा करो, पढ़ाई करो, वो फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि। इसलिए जितना हो सके इसी जन्म में हमको करना चाहिए, ऐसा हमारा उत्साह होना चाहिए। हाँ, ठीक है, तो चलो अभी प्रसाद लेते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री निकाय गौर हरि की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।